नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। रवाना होने से पहले दिए बयान में उन्होंने कहा है कि भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का खास स्थान है। उन्होंने कहा है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करना है। फ्रांस में श्री मोदी भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के तहत फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे 2 दिन की यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। स्लोवाकिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को एवियन में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पुनः फ्रांस लौटेंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रैट केटी पारनायक ने विश्व रक्तदाता दिवस की पूर्व संध्या पर सभी स्वैच्छिक रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रक्तदाता साइलेंट हीरोज हैं, जिन्हें निस्वार्थ कार्यों से हर दिन अनगिनत जानें बचाती हैं। वे आपातकालीन स्थिति में मरीजों को उम्मीद देते हैं, प्रसव के दौरान माताओं की मदद करते हैं, सर्जरी और कैंसर का इलाज करा रहे लोगों का साथ देते हैं और जरूरत के समय जीवन बचाने में मदद करते हैं। राज्यपाल ने कहा है कि इस साल की थीम मानवता की एक बूंद रक्तदान करे जीवन बचाए। रक्तदान के मूल में मौजूद करुणा और एकजुटता की भावना को दर्शाती है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष नीतिगत हस्तक्षेप और अतिरिक्त सहायता की मांग की है। राज्य के सामरिक महत्व एवं दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने जनसंख्या आधारित वित्तीय सहायता मानदंडों की समीक्षा करने तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का विस्तार कर 250 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों को इसमें शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने वर्ष 2047 तक राज्य के 40,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहयोग इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल को सशक्त बनाने और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अलग कैडर बनाने की भी मांग की है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि इस अवधि में आधारभूत ढांचे, संपर्क व्यवस्था, जन कल्याण, प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ईटानगर स्थित भाजपा राज्य मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने ग्रामीण सड़कों, रेलवे विद्युतीकरण, विमानन स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, वित्तीय समावेशन तथा स्वदेशी रक्षा उत्पादन में हुई प्रगति का उल्लेख किया। इस अवसर पर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश से सेला में एवं नेचुफू टनल और फ्रंटियर हाईवे जैसे प्रमुख परियोजनाओं को भी रेखांकित किया। भारतीय सेना द्वारा 1962 के भारत चीन युद्ध के समय का माना जा रहा एक बिना विस्फोट किए मोर्टर शेल सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है। यह शेल गत 11 जून 2026 को तवांग के लेब्रांग क्षेत्र में पाया गया था। तवांग पुलिस को सूचना मिलने के बाद इलाके को घेर लिया गया और सेना के साथ संयुक्त अभियान शुरू किया गया। बाद में बम निरोधक दस्ते से मोर्टर शेल को मेथांग ले जाकर सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया। इस कार्रवाई में किसी भी प्रकार की जानहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है। तवांग पुलिस अधीक्षक तासीदारांग ने सेना की त्वरित कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त करते हुए लोगों से अपील की है कि यदि कभी भी बिना फटे सैन्य गोला बारूद दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दी जाए। तानी लिपि के आविष्कारक टोनी कोयू को पासीघाट में आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित लुमरदाई साहित्य पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री मुकुट मिठी ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। यह सम्मान अरुणाचल प्रदेश में साहित्य और भाषा की विकास के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अरुणाचल प्रदेश साहित्यिक सोसाइटी APLS द्वारा स्थापित इस पुरस्कार में स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, पुस्तकें तथा 50,000 रुपए की नकद राशि प्रदान की जाती है। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 14 जिलों ईस्ट कमिंग, वेस्ट कमिंग, पापुमपारे, पाके केसांग, कुरुंगकुमे, क्रादादी, अपर सियांग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, लोअर दिवांग वैली, नामसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और असम के जोरहाट में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 5 जवान शहीद हुए। वायुसेना ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वायुसेना ने बताया कि दुर्घटना स्थल पर आवश्यक कार्रवाई और प्रारंभिक जांच जारी है। वायुसेना ने लोगों से अपील की है कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने तक किसी भी तरह की अटकलों से बचें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।